दुर्जनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो दिनो वा नमस्तस्मै जो इत्यादि सागर सुधी आदि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज जब कभी बचपन में परीक्षा के दिन आते थे तो रात सोने से पहले मां से कह के सोते थे कि सुबह परीक्षा है और हो सकता है कि नींद लग जाए और ना खुले, तुम जगह जरूर लेना। और मां सुनकर के कोई जवाब नहीं देती थी तब फिर से दो तीन बार कह देते थे कि मां देखो जगह ही लेना, हो सकता है कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊं पर परीक्षा तो देनी है। और फिर एकाध दो बार पहले जो घटित हो चुका था उसको भी रिपीट कर देते थे कि मां सुनो, हो सकता है कि पिछली बार की तरह मैं नींद में तुम्हारी बात ना सुन करके ना उठूं, पर तुम उठा ही लेना। और अगर मैं जिद करूं और तुमसे कोई कड़ी बात भी कह दूं तो बुरा मत मानना, उठा ही लेना। हाथ पैर भी कह दूं कि नहीं उठता हूं तब भी तुम जिद करके उठा ही लेना, ऐसा कह देते थे। और फिर सुबह होती थी और मां जगा देती थी और हम उठ जाते थे। हमें रोज कोई चाहिए जो हमें जगाए, जो हमें उठाए। जगा देना नहीं, हमें उठा लेना, हमें ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए इशारा करना। कौन हो सकता है ऐसा जीवन में? बचपन में तो होता था, हम तो बड़े हो गए हैं, किसी से ये भी नहीं कह पाते हैं कि देखो अगर मैं नहीं उठ पाऊं तो उठा देना, अगर मैं जग नहीं पाऊं तो जगा देना। इससे अच्छा तो था कि हम छोटे ही रह जाते, ये अपने उम्र में बड़े हो जाने के भ्रम ने तो हमें बहुत सारी चीजों से वंचित कर दिया। सोए हैं तो सोए हैं, कौन है हमें जगाने वाला, कौन कहेगा कि उठो। बहुत सोई है संसार में, जागो। कोई आता नहीं है तो हम स्वीकार कहां कर पाते हैं, हम इनकार कर देते हैं। स्वीकृति बहुत कठिन है, टोटल एक्सेप्टेशन बहुत कठिन है और वो बहुत आसान भी है। कठिन तो तब होता है जब हम भीतर में कठिन होते हैं, और जैसे ही हम सरल हो जाते हैं, जैसे ही हम श्रद्धा और समर्पण से रह जाते हैं, वैसे ही हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, हम सब कुछ स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। अभी तक संसार के चलाए चलते थे, संसार की सब बातें कोई बताए तो स्वीकार कर लेते थे, परमात्मा की कोई बात बताए तो मन नहीं करता था, लेकिन जैसे ही श्रद्धा होती है, जैसे एक रिक्तता और फुलफिलमेंट दोनों चीजें एक साथ शुरू हो जाती है। हम अगर खाली होना शुरू होते हैं क्योंकि हमने देना शुरू कर दिया, और अगर हम भरना शुरू करते हैं, नदी बहती जाती है, कहां डालती जाती है अपना पानी, सागर में डालती जाती है, लगता है खाली हो जाएगी, कहां होती है खाली, सागर हो जाती है, नदी ना होकर के है, अपने को दे करके सागर को, वो खुद सागर हो जाती है। बूंद सागर में गिरती है तो बूंद की तरह तो खत्म हो जाती, पर सागर की तरह तो फिर भी एग्जिस्ट करती है। बस ऐसा ही है ये श्रद्धा का मार्ग, ऐसा ही है ये समर्पण का मार्ग। लेकिन पता नहीं हम कब शुरू करेंगे, जिस दिन भी हम बच्चे हो जाएंगे। सेल्फ गिविंग टू डिवाइन, पता नहीं क्या क्या चीज दी होगी, दान की जब जब भी बात आई होगी हमने पता नहीं कितना कुछ दिया होगा, लाखों रुपए दिए होंगे, लेकिन आज तक कभी अपने को दिया, अपने को कहीं छोड़ा कि पूरा जीवन छोड़ता हूं, सच्चे गुरु शास्त्र के चरणों में अपना पूरा जीवन छोड़ देना, इसका नाम श्रद्धा है, इसका नाम समर्पण है। हमने आपसे पिछले दिनों चौथे प्रकार की शांति की बात की थी और चौथे प्रकार के रिश्ते की बात की थी, आपको शायद याद होंगे। सारे रिश्तों से पार ले जाने वाला अगर कोई रिश्ता है तो श्रद्धा का रिश्ता है, समर्पण का रिश्ता है, और तीन तरह की अपने शरीर की, अपने पूर्ण विलास की सामग्री मिल जाने पर होने वाली शांति, अपने परिवार जनों के प्रति दायित्व के निर्वाह करने से मिलने वाली शांति, और बाहर दीन दुनिया की सेवा करने से मिलने वाली शांति, इन सब शांतियों के पार है अपने को दे देने की शांति, आत्मसमर्पण की शांति, श्रद्धा की शांति। क्या हम ऐसी शांति पाने के लिए अब अपने को तैयार नहीं करेंगे? क्या हम एक ऐसे रिश्ते में बनकर पसंद नहीं करेंगे? देखो पत्थर के सामने तो माथा छुपा देता है व्यक्ति, अपने स्वार्थ के सामने जिस चाहे के प्रति अपना माथा झुका देता, लेकिन जहां से परमात्म समझ सकता है वहां माथा नहीं झुकता, वहां हाथ नहीं झुकते। पूरी दुनिया से जुड़ने तैयार है व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन अपने से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी आत्मा से जुड़ने तैयार नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा सब चीजों को, बहुत गहराई में सोचना पड़ेगा, और ज्ञान से अपने देने की शुरुआत हो, अपना अपने को देने से पहले अपना पद तो देना पड़ेगा। जो व्यक्ति दूसरे की आत्मा को आत्मा नहीं मानता, वो अपनी आत्मा को कैसे आत्मा मानेगा? आत्म नाम को के ज्ञान नहीं, जे जे करनी तन करण जी। हम कितना भी तपस्या कर ले, हम कितना भी अपने जीवन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया करें, लेकिन अगर हमारे भीतर आत्मा और अनात्मा का कोई श्रद्धा नहीं है, तब हमारे जीवन में वो सारी चीजें होते हुए लोगों की नहीं है। तभी एक बार चर्चा हुई थी तालाब और नदी के बीच में, चर्चा हुई थी, तालाब को बहुत दुख होता था नदी को देख करके, नदी उसकी मित्र थी, उसने नदी को कई बार समझाया कि तू करती क्या है, निरंतर अपना सारा पानी वेस्ट करती है, डालती चली जाती है समुद्र में, समुद्र में कभी पेड़ों को पानी दिया? हम तालाबों को क्या समझा नदी की, समुद्र ही को देता है, तब तो बरसता है, तब तो भरती है नदी, पर इतना आसानी से समझ में नहीं आता। अहंकार बीच में आ जाता है, वो अपने को देने से रोक देता है कि क्या कर रहे हो, किसी के चरणों में झुकने से पहले ऐसा लगने लगता है जैसे हमारी स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी। अरे कैसे झुक जाए, हमारा तो स्वभाव है स्वतंत्र होने का, हम किसी के पीछे कैसे चल सकते हैं, और वो भी हमारे जैसे चलते फिरते आदमी के, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पीछे तो बहुत मुश्किल है, जिसके पास मेहनत गए हो पैसा वैसा उसके पीछे हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, खड़ा हुआ है विजय रुकाटी हाथ में, खड़ा कबीरा और कहता है जो फूक के खड़ा तो चले हमारे साथ, अरे ऐसी ऐसी कैसी बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति के पीछे तो नहीं हो पाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए तो कुछ रिटर्न होगा इसकी अपेक्षा ही नहीं है। यहां तक कि अगर देने वाला सच्चा है तो थैंक्स भी नहीं कहता कि देने के बाद उसको थैंक्स मिले। दुनिया की सारी चीजें देने के बाद तो अपेक्षा हो सकती है, लेकिन जो अपने को देता है उसे कोई अपेक्षा नहीं होती। और बिना अपने को समर्पित किए मोक्ष मार्ग की चर्चा हो सकती है, शुरुआत तो नहीं हो सकती। कोशिश करिएगा उस चौथे प्रकार की शांति को पाने की, उस चौथे प्रकार के रिश्ते को कायम करने की जो सारे रिश्तों से पार ले जाता है। एक ऐसी जगह हमारे जीवन में हो जहां हम जुड़ जाए और उसके बाद हमें टूट जाना पड़े। यहां तो दुनिया में जाने कितने दरवाजों से भीतर प्रवेश हुए, लेकिन हर दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया। जाने कितने लोगों का हमने हाथ थामा, लेकिन इसके पहले कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचे वे सारे हाथ छूट जाते हैं। मंजिल क्या? इस जीवन के छूटने पर सारे हाथ छूट जाते हैं। यही के ही क्या हम कोई ऐसा हाथ नहीं पकड़ सकते हैं जो कि कभी नहीं छूटे? मैं बहुत सांसारिक से बात कर रहा हूं शायद आपसे। कितनी कोशिश हमारी होती है दुनिया में सहारा ढूंढने की, और ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन कभी हमें ऐसा सहारा नहीं ढूंढा जो कभी हमसे न छूटे। कभी हमने अपने लिए हाथ अपना सहारा नहीं लिया, अपना हाथ अपने हाथ से नहीं पकड़ा हमने शायद। किसी ने पकड़ा? शायद नहीं पकड़ा। अपना हाथ थामने वाले मैं स्वयं बन गया। आपको दीपक हो, मैं अपना दीपक स्वयं बन जाऊं। दोस्त डाई सेल्फ, नो डाई सेल्फ, अपने को जान लूं मैं। क्या ऐसा नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। वो नदी निरंतर कोशिश करती थी कि वो जितना हो सके जो आया है, जहां से आया है, उसे ही देती चली जाए, और देती चली जाती थी। तालाब बहुत दुखी होता था और कई बार तो डांट देता था, कहता मेरा तुम्हारा रिश्ता हम छोड़ते हैं, ये तुम मेरी बात ही नहीं मानती। निरंतर देती चली जाती, तुम्हारी टेक छूटती नहीं, हमारे समझाने का कोई मतलब ही नहीं। नदी हंस बन देती थी और देती चली जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत भीषण गर्मी पड़ी पड़ती है, दो दो महीने तक भीषण गर्मी पड़ती है। नदी की धारा सिपटने लगी, पतली हो गई। दूसरे को दूसरे का घटना तो दिखाई पड़ता है, अपना घटना नहीं दिखाई पड़ता। नदी की धारा पतली हो गई, तालाब कहता है कि तू सूखती जा रही है, लेकिन तालाब खुद सूखता जाता था, इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि नदी की धार तो पतली की पतली बहती रही, लेकिन तालाब पूरा का पूरा सूख गया। अब तालाब के समझ में आया कि मैंने तो कभी किसी को नहीं किया, फिर भी मैं सूख गया। और ये निरंतर देती थी, अपने को देती चली जाती थी, फिर भी निरंतर दे रही, भीतर भीतर दे रही है, बाहर तो पतली मालूम पड़ती, फिर भी देती चली जाती। ऐसा ही है ये मोक्ष मार्ग, जब हम अपने को देते हैं। कोई लोग मेरे पास एक चतुर्मास में बैठा करते थे और डिस्कशन करते थे। लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि ये लोग हमेशा बैठे रहते हैं महाराज जी के पास, कितना डिस्कशन करते हैं, क्या बात करते हैं। और वो एक दो घंटे गुजारते थे। तो एक दिन बाहर निकल करके चार महीने के बाद किसी ने उसे पूछ दिया कि क्या पाते हैं आप यहां, जो निरंतर रोज आते हैं, और क्या मिलता है आपके लिए यहां पर? तो उस व्यक्ति ने बड़े प्रेम से जवाब दिया था कि यह मैं कहां रहता हूं, मैं तो यहां नहीं रहता, जो कुछ मुझे पाना है वो मेरे पास है। यहां तो अपनी कषाय खोता हूं, यहां तो अपनी वासनाएं खोता हूं, यहां तो अपने सारे पाप खोता हूं, और स्वच्छ होकर के बाहर लौटता हूं। पाना क्या है, कौन देता है? यहां पर कोई नहीं देता है। ये सच्चे लोग शास्त्र के चरणों में अपने को खोना है। ये जो अपने को खोना है, समर्पण है, वो हमें अपने तक ले जाता है। हम अपने को खोकर अपने को ही पा लेते हैं। नदी जैसे सागर को देकर के खुद सागर हो जाती है, ऐसा गणित है ये, पर है बहुत कठिन। बचाने की बहुत इच्छा होती है। देखो तो चार पैसे देते हैं तो अपने को बचा के देते हैं, मेरा नाम बचा रहेगा, चार पैसे देता हूं। पहले तय कर मैं इतने रुपए दूंगा मेरा नाम कहां लिखा जाएगा, किस पटिए पर लिखा जाएगा, फ्रंट में लिखा जाएगा कि बैक में लिखा जाएगा, लोग देख पाएंगे कि नहीं, मेरा नाम सुंदर रहेगा कि नहीं, मैं बचा रहूंगा कि नहीं, मैं देता हूं सब देता हूं लेकिन मैं बचा रहा देते भी हैं पर उनको बचाने के लिए देते हैं। लेकिन ये तो दौलत ऐसा है कि जिसमें कुछ भी ना बचे, जो मेरा नहीं है वो नहीं बचता है, जो मेरा है वो तो बच ही जाता है, उसको बचाने की आवश्यकता नहीं। बचाने की चेष्टा तो जो मेरा नहीं है उसको ही होती है, देख लीजिएगा घर घर करके, जो जो मेरा नहीं उसको बचाने की चेष्टा, जिसको लगता है कि ये मेरा नहीं है उसी पर ग्रिप जाता है, जिस दिन छूटने लगता है उस दिन तो ग्रिप बहुत टाइट हो जाती है, जिस दिन शरीर छूटने लगता है उस दिन तो और जगह शुरू हो जाती है कि यह छूट ना जाए, जबकि जानते हैं कि छूटे लगते हैं, इसके पहले कि वो छूट है हम खुद नहीं छोड़ पाते हैं। और जो एक बार सबर पर सीख लेता है, जो एक बार दया सीख लेता है, वो व्यक्ति फिर उसका अनुभव करके दया ही शुरू कर देता है। कभी आपने सोचा कि हमारे रिश्ते कैसे हैं? हमारे रिश्ते तो सागर में दीप की तरह हैं, दो दीप सागर में तैरते हैं और एक सांस भी अगर एक सांस भी बहे और एक दूसरे से सटके भी बहे तब भी दीप तो दो ही है, एक कहां हो पाते हैं? हमारे सारे रिश्ते जितने भी हैं वो एक होने के लिए है, दो ही है। जयंत कुमार से जब किसी ने कहा कि वो दोनों अलग अलग हो गए तब उन्होंने कहा था कि दो अलग हो गए इसमें आश्चर्य क्या है, दो दो दिन एक साथ रहे आश्चर्य तो उसमें है, अगर दो होकर के दो एक साथ रहे हैं तो अलग होने ही था, अगर दो एक होकर रहे हैं तो अलग होने का प्रश्न ही नहीं है। जब सांसारिक स्थिति में हम दो एक होकर के रह सकते हैं तो क्या हम भगवान के बीच या अपने ही भीतर जो हमने पूरा जीवन शुरू कर दिया है, जो एक हमारी आत्मा की पवित्रता है, जिसको कि एक मैं हमें एक आंख में दिखाती है कि वो तुम्हारी वास्तविकता, और ये जो हम जीवन जी रहे हैं वर्तमान में राग देश से युक्त, ये दो ही तो है, एक तो हमारी प्योर स्टेज, एक तो हमारी एकदम पवित्र अवस्था जो हमारा नेचर है, और एक ये राग देश से युक्त, ये दो फेस तो है ही कम से कम। इन दोनों से पहले क्या हम ये होंगे, हम अपने स्वभाव में नहीं निभाएंगे? आज हमें कोशिश करनी है कि हम अपने स्वभाव में जिए, और स्वभाव में जीने का बहुत आसान सा तरीका है कि हम अपने सब वैभाविक स्थितियों को कहीं छोड़ दें, कोई एक जगह हमारे जीवन में हो जहां हम अपना सब कुछ या जो कुछ भी हमारा नहीं है उसे दे सके, थोड़ी देर के लिए ही सही, पूजा के क्षण में ही सही, दर्शन के क्षण में ही सही, कि मेरा कुछ नहीं है, मैं अपने अहंकार तौर पर पहला माथा टेकता हूं भगवान के चरणों में, खड़े होकर के प्रार्थना करके दूसरा अहंकार तौर पर उन्हें तक सोचता था कि नहीं बना पर प्रभु पतित पावन मैं अपना आज कहता हूं बहुत हिम्मत से कहता हूं, ये लाइन कहने में बहुत हिम्मत चाहिए कि प्रभु पतित पावन मैं अपना, इसलिए तो शरण में आया, नहीं तो कोई नहीं बैठा रहता घर में, क्या ये व्यक्ति आने की आपके पास तक। और अब आपको याद दिलाने आया हूं कि जो वेद आप निहार स्वामी मैं पिता, आपकी दुर्गा बनी आपकी प्रशंसा इसमें है कि मेरा जन्म मरण बैठो और कुछ के दिन ही मात्र दीजिए उम्मीद, और कोई चाह नहीं है, सिर्फ मैं मात्र चाहिए, मुझे सच्ची श्रद्धा चाहिए, मुझे अपने दृष्टि की निर्माता चाहिए, इसलिए आपके दर्शन करने आया हूं, मेरी ये दृष्टि दुनिया को देख करके निरंतर मलिन होती रहती है, आपके दर्शन से ये पवित्र हो जाती, इसलिए मैं अपनी दृष्टि की पवित्रता के लिए अपने शब्दों के लिए पता नहीं कहां कहां मैंने अपने को सौंपा, लेकिन सबने मेरा उपयोग किया, आज आपके सामने अपने को सौंपने आया हूं, और हाथ मूर्ति डाल करके जब शरीर भी छोड़ देते हैं काय स्वर्ग में तब समर्पण शुरू होता है। कैसा प्रकरण है सत्य देव और शांत तीनों के सामने ये प्रक्रिया जब तक शुरू नहीं होगी तब तक हमारे धर्म की शुरुआत नहीं होगी। एक जगह जरूर खोजिएगा, उसके खोजने से क्या होगा, जैसे हम समर्पित होंगे वैसे हमें आत्मिक शांति मिलेगी, आत्मिक शांति कसौटी है, जहां जहां हम समर्पित होते हैं अगर हमें आत्मिक शांति मिलती है तो समर्पित जहां होगा वो जगह ठीक है और वहां समर्पण ठीक है। कई बार ऐसा पूरा जीवन बचाने की चेष्टा तो नहीं की, अगर बचाने की थोड़ी भी चेष्टा है तो समर्पण कम है, समर्पण कम है।
मैं कल पढ़ रहा था कि अगर सही समर्पण है, सही विश्वास है, तब बेटा जो है पिता की उपस्थिति में ही अपने को परिवर्तित कर लेता है, और अनुपस्थिति में तो और अधिक सावधान होता है। दो स्थितियां तो बनती हैं, पिता है तब कोई बेटा अपने को संभाले तो संभाल सकता है, और पिता नहीं हो तब तो दो चीजें हो सकती है कि वो सोचे कि जो जो पिता की उपस्थिति में नहीं कर पाते थे वो आराम से कर लो, और या फिर अब पिता नहीं है वे जिन जिन चीजों को बना करते थे अब ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो टोक देते थे लेकिन अब तो कोई टोकने वाला भी नहीं रहा है, इसलिए कुछ सावधान हो जाए। 16 वर्ष के हो गए थे विनोबा, और 16 वर्ष तक विनोबा के पिता हमेशा विनोबा को कोई ना कोई कंपनी बता करके डांटते ही थे। रात 10 बजे भी घर वापस लौटे हैं और विनोबा सो गए हैं तो कहते थे बिन्या सो गया क्या, तो कहते हैं सो गया, उठाओ तो उसको। उठा के हम बोलते थे क्या तुमने वो काम करा कि नहीं, विनय तुम बहुत लेजी हो गए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, और एक चपट लगाते घर सो जा। रोज का काम था, वे चूकते ही थे और ये डांटते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पिता लौटे, विनय जागते थे लेकिन आज पिता ने नहीं बुलाया। विनोबा इंतजार करते रहे कि पिता बुलाएंगे और जरूर मेरे से पूछेंगे आज तुम्हारे बहुत से काम बिगड़े हैं, आज तो जरूर बहुत बहुत पड़ेगी, लेकिन नहीं बताया पिता ने। बहुत आश्चर्य है, रात नींद नहीं आई ठीक से, बताइएगा। आज के बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, आज का बेटा लड़का ज्यादा है, बेटा कमती है, लड़का होना बहुत आसान है, बेटा होना बहुत कठिन है। वहां समर्पण है और वहां तो निरंतर इतना ही फर्क है। तो सारा ठीक से नहीं सोच सके, उठ करके 4 बजे जब मैं झाड़ू लगाती थी तो जाकर के हाथ पकड़ लिया कि कल पिता ने नहीं बोला, पिता मुझसे नाराज है क्या, कल उन्होंने मुझे डांटने के लिए तक नहीं बोला क्या, इतना अधिकार नहीं रहा मेरा मेरे ऊपर उनका। तो मैं कहती कि मैं तुम्हें जानती क्यों नहीं बोला, तुम्हें क्यों नहीं पूछ लेता, डर लगता है, मैं पूछ ले पिता से जाकर के। और सुबह जाकर के पिता से पूछा कि कल रात आपने बुलाए नहीं। पिता मुस्कुराए और इशारा कर दिया, टेबल पर एक कागज पड़ा हुआ था। पिता अपने मुंह से कैसे कहते हैं, उस कागज पर लिखा हुआ था कि आज मेरा बिन्या 16 वर्ष का हो गया। वेद में लिखा है कि 16 वर्ष का बेटा फिर मित्र की तरह हो जाता है। आज तक मैं अपने बिन्या को बेटा मान करके उसकी हर गलती और ना गलती पर उसे डांटता आया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं अपने बेटे को मित्र की तरह सलाह दूंगा, डांट तो नहीं सकूंगा, मेरा बिन्या मुझे क्षमा करे, मैंने 16 वर्ष तक उसे डांटा। बताइएगा, मुझे बताइएगा आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मेरे से पूछते हैं तो मेरी तो प्रतिक्रिया ये है कि समर्पण इतना गहरा यदि संसार हो सकता है तो क्या हम परमार्थ को जानने वाले लोग परमार्थ के प्रति अपने आत्म कल्याण के प्रति इतने समर्पित नहीं हो सकते। मैं तो इतना ही समझ पाता हूं इन घटनाओं से कि यदि हम अपने को एक बार पूरी तरह से इन सब सांसारिक प्रबंधों से दूर हट करके अपने को कहीं समर्पित कर दें और फिर चले जाए दुनिया में, दुनिया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। जिसकी सच्ची दिल पुरुषार्थ और श्रद्धा है भैया, उसको दुनिया के बीच में भी आखिर वो सच्चे दिल पुरुषार्थ वापस ले आते हैं कि कहां जाकर के फंसते हो, वो देखते रहते हैं। मैंने तो देवताओं से ही माना है, जो जागता या सो गया ये देखने बार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वो देवता है। मेरे भीतर तो देवता की इमेज वही है कि जो अगर मैं सो गया हूं तो मेरे दरवाजे पर नॉक करता है कि सोना मत, जो मेरे भीतर हमेशा इशारा करता रहता है कि क्या करते हो, जब जब मैं बात करने कोई आकर के मेरा हाथ क्यों पकड़ देता कि करते क्या हो, तुम तो मेरे प्रति समर्पित हो। याद आ जाए कि मैं बलि तो माता देख के आया था और आज मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं बलि तो पहुंच करके आया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर भी ऐसा कर रहा हूं। ये समर्पण पता नहीं कितनी जगह हमें संसार में गिरने से बचा देता है कि हाथ पकड़ के चलने वाली स्थिति हमें अब समय रहते कर लेना पड़ेगी। कोई हमारा हाथ पकड़े या कि हम किसी का हाथ पकड़े, हमें दोनों से कोई एक चीज को स्वीकार करनी ही पड़ेगी। एक तो स्थिति होती है कि बेटा हाथ पकड़े हुए हैं पिता का, और एक स्थिति होती है कि पिता पकड़े हैं हाथ बेटे का। शुरुआत की स्थिति में पिता ही पकड़ता है हाथ बेटे का, बात को जब छोड़ने लगता है तो बेटा पकड़ लेता धीरे से कि करते क्या हो, अभी तो मैं इतना सशक्त हुई नहीं, कैसे छोड़ रहा हूं। और शायद इसीलिए तुलसीदास को लिखना पड़ा कि मैं इतना कच्चा हूं, अभी बात छुड़ाए बात हो निभा जान के हो, जो हृदय से जाओ तो सबल जान तो है। एक बार समर्पित होने वाला व्यक्ति अगर भगवान भी उसका साथ छोड़ता है तो कैसा छोड़ने कैसे जाऊंगा। आप मुझे निर्भर जान करके बाहर से हाथ छुड़ा के जा सकते, लेकिन जो हृदय से जाओ तो सबल जान हो तो है। भगवान को भी उदाहरण देने चला जाता है, समर्पित व्यक्ति जिसकी दृष्टि निर्मल है, वो व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। सच्चे देव को शास्त्र उसके भीतर जिस तरह से जज्ब हो जाते हैं, शायद किसी और के भीतर जज्ब नहीं होते हैं। सारा ज्ञान दिया रह जाता भैया आखिरी में, कहते हैं कि पंच नमस्कार मंत्र भी याद आ जाए तो भारी पुण्य समझना, वरना ये सब चीजें याद नहीं आती। दुनिया याद आती है आखिरी समय जब आंख मुदने लगती है, इससे पहले कि आंख मुदे हम संभाल लें। एक बहुत छोटी सी घटना महमूद गजनवी के टाइम की है। वो तो मोमडन थे, पर जीवन किसी का भी हो, मनुष्य की नफरत से जीना होना तो कहीं भी हो सकता है। ये तो हमने बाद में डिवाइडेशन किया है और अपनों को सुपीरियर और दूसरों को इंफीरियर कर रहे हैं। ऐसे ह्यूमन तो हम कभी किसी को ट्रीट नहीं करते। हम तो अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की हैसियत से ट्रीट करते हैं, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर की हैसियत से, एक लेमैन है तो लेमैन की तरह से, कभी उसको हम आदमी की तरह तो ट्रीट करते हैं। डॉक्टर से डॉक्टर की हैसियत से मिलते हैं, एज ए ह्यूमन नहीं मिलते। मिलते हैं आप क्या कभी कभी हमने अपने परिचय दिया कि आर यू ह्यूमन, आई एम ऑल्सो, क्या मनुष्य है मैं, मैं डॉक्टर हूं, आप ये नहीं बनते, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर। अच्छा मिला देते हैं, हाथी तो मिलाना है पर आपसे नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके भी मेरा अहंकार है अपने डॉक्टर होने का। ये अहंकार जब तक नहीं टूटता तब तक समर्पण नहीं होता, तब तक अपने को दिया नहीं जाता। महमूद गजनवी के दरबार में एक वजीर काम करता था। उस वजीर का बहुत मन था कि उसका बेटा भी दरबार में सलाहकार की हैसियत से रहे, और उसने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया था। हर पिता अपने बेटे को बहुत पढ़ाता है, इसलिए पढ़ाता है कि वो संसार में फिट हो सके। फिटनेस सिर्फ संसार की फिटनेस, इतनी अपेक्षा होती है उसकी। संसार में वो आउटसाइडर ना कहिए, उसे वो सब करना चाहिए जो संसार के लोग करते हैं। अगर बाहर बाहर होकर के और चाट भी खाने पड़े तो उसे खानी चाहिए, क्योंकि बैकवर्ड कैसे हो सकता है वो, तो फॉरवर्ड है। अगर उसको किसी पार्टी में, किसी मैरिज पार्टी में जाकर के अगर पिता के सामने में वाइन का ग्लास लेकर के खड़े होना पड़े तो ओके, मेरा बेटा फिट है। पिता के सामने कभी नहीं रहेगा कि अनफिट है, जबकि वो पिता के सामने वाइन लिए हुए हैं। अब तो फिटनेस के बारे में यही है कि जितना तुम्हें पतंग हो सके, इस शर्त पर कि तुम संसार में उत्तीर्ण हो, चाहे जो करो। बहुत आश्चर्य होता है मुझे तो आप हर जगह देख करके कि 11 बजे रात को अगर बेटा किसी महाराज की सेवा करके या मंदिर में धर्म ध्यान करके लौटता है तो पिता कहता है कि वो कहीं नहीं लगो, देखो घर की तो आपको हो सकती नहीं, 11 बजे लौटे हैं। और अगर वही बेटा शराब के नशे में 12 बजे लौटता है तो पिता इस तरफ मुंह
कर लेता है, देखता तक नहीं कि चुपचाप निकल के अपने कमरे में सो जाए, कौन झगड़े में पड़े। मुझे मिलेगा ऐसा हमने तो नहीं सोचा था, आप तो देख रहे हैं। हमारा जमाना भी था जबकि लोग इन छोटे छोटे से संसार के नियमों का भी पालन करते थे। परमात्मा के नियम तो बहुत बड़े नियम होते हैं, इन अनुशासन को स्वीकार करते बेटे की तरफ और कहा कि अभी एक साल और। वजीर को बहुत निराशा हुई, थोड़ा आंख उठा के तो देख लेते कि लायक है कि नहीं, और बिना आंख उठाए कह दिया कि एक साल और। वजीर ने कहा ठीक है एक साल और पढ़ाया उसको। दूसरी साल ले जा करके राजा के सामने फिर खड़ा किया और कहा कि ये मेरा बेटा आपके आदेश से एक साल और शिक्षा लेके आ गया है। अब की बार राजा ने धीरे से आंख उठाई और कहा कि एक साल और। अब तो बहुत मुश्किल हुआ वजीर के लिए कि करते क्या हैं आप, इतना पढ़ लिख के आए, इतना समझदार हो क्या है, और अब तो आपको सलाहकार होने लायक हो गया, अब आप रिटर्न मत कीजिएगा। तब राजा ने कहा कि मैं एक साल पढ़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी संत के चरणों में एक साल इसको रहने भेज दो, फिर देखेंगे। कहा ठीक है, अब अगर सलाहकार बनाना है और राज दरबार में बनाना है तो भेज देते हैं, एक साल किसी संत के चरणों में भेज देते हैं। और किसी संत के चरणों में वो रहने लगा। एक साल पूरी होने को थी और वजीर ने सोचा कि याद दिला दें बेटे को कि साल भर पूरी हो गई, अब चलना है और राज दरबार में अब तो तुम्हें सलाहकार की हैसियत से रख ही लिया जाएगा। जब वो पहुंचा तो देखा अब की बार बेटे ने उसकी तरफ सिर्फ आंख उठा के नहीं देखा, उसके गुरु से कहा कि ये मेरा बेटा है ना? हाँ आपका ही बेटा है, ये मेरे से ठीक से बात भी नहीं करता, आपने क्या सिखाया इसको? मैंने कुछ नहीं सिखाया, मेरे पास रहता है, मैंने तो आज तक इससे बात तक नहीं करी, बस ये रहा आता है, छाया की तरह मेरे आस पास डोलता है और बहुत शांत हो गया है। अब किसी चीज की कोई आकांक्षा इसके भीतर नहीं रही, पहले तो मेरे से बड़ी बड़ी बातें करता था ज्ञान की, अब तो चुप रहता है। मैंने कभी इसके ज्ञान को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, पर ये चुप होने की शुरुआत इसने अपने आप कर दी। मजीद ने फिर से कहा कि चलता है कि नहीं चलता, कितना मुश्किल से मैंने तेरे को दो साल पढ़ा और एक साल ये वेस्ट किया सिर्फ इसलिए कि राजा के दरबार में तुझे कुछ जगह मिल जाएगी। पर बेटे ने तो कुछ कहा तक नहीं, आंख तक नहीं उठाई। वजीर बहुत हैरान हुआ, राजा तक खबर भेजी कि कहां से कहां आपने मेरे हाथ से बेटा भी निकल गया, कम से कम दो साल पहले ठीक था, अपने पास ही रखने का आपने रखते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये तो मेरे हाथ से भी गया और आपके हाथ से तो चले गया। राजा ने कहा कि अब तो मुझे लेने आना पड़ेगा, आता हूं मैं। और कहते हैं कि पूरे अपने परिकर के साथ राजा उस आश्रम तक आया जहां की वो बेटा किसी संत के चरणों में बैठा हुआ और किसी से कुछ नहीं बोलता था। राजा और राजा ने कहा चलो तुम हो गए, मैं तुम्हें अपना दरबार का सलाहकार बनाना चाहता हूं। तब उसने मुस्कुराकर अपने गुरु की तरफ देखते हुए कहा कि इनसे कह दो आपके दरबार से पहले मुझे एक और दरबार मिल गया, अब मुझे किसी और दरबार की जरूरत नहीं है। काश उसे तो एक दरबार मिल गया था, हमारे जीवन में तो कई कई बार वैसा दरबार मिला है पर इसके बाद भी हमने उसे स्वीकार नहीं कर पाया। सच्चे देव गुरु शास्त्र से बड़ा कोई दरबार हो सकता दुनिया में जो कि हमें कोई जगह दे सके? आके देख लीजिएगा कहीं आपको दरबार मिल जाए सच्चे देव गुरु शास्त्र के अलावा संसार में, तो रहिएगा, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। क्या दे सकते हैं सच्चे देव गुरु शास्त्र, वो तो आपको ही पाना है। आप अगर उस दरबार में आकर के अपने को समर्पित करते हैं तो आप भर करके लौटिएगा, आप खाली होने तैयार हैं तो भर के लौटिएगा, इतना जरूर कहता हूं, लेकिन आप भरे भरे रहिएगा तब तो फिर आप खाली हाथ लौट जाइएगा। कोशिश करिएगा कि अब हम अपने जीवन को
उसके ही चरणों में समर्पित करके खाली हो सकें इन वासनाओं से, इन राग द्वेष से, इन वैभाविक स्थितियों से, ताकि हमारा जो स्वभाव हमारे पास हमेशा से है वो एक्सप्लोर हो सके, वो प्रकट हो सके और हम अपने आत्म स्वभाव में लीन हो सके। ऐसी पवित्र भावना के साथ ये समर्पण, ये श्रद्धा का रिश्ता हमें इस संसार के सारे रिश्तों से उत्तीर्ण करके हमें अपने आत्मा के निकट पहुंचा देवे, इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार करिएगा।
पन्नतम धम्मं शरणं पवच्चा।
विद्यासागर मुनि
Yeah. करता हूं।